ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायजन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के नौवें अध्याय का 35 नंबर का गद्य। श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 9 और गद्य की संख्या है 35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तत्र भवान् किम् देवदत्तवत् इह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रेण स्वकृत कुशल अकुशलम् फलम् उपाददाति आभोषित् आत्माराम् उपसमशीलः समञ्जस दर्शन उत आस्ते उदास्ते इति ह वा वाव न विदामः। अथ तत्र भवान किम देवदत्त वद्यः। बोलिए। अथ तत्र भवान किम देवदत्तवत् इह। गुण विसर्ग पतितः पारतंत्रेण स्वकृत कुशला कुशलम फलम उपाद फलम मुपाददाति आहोस्वित आत्माराम उपसमशीलः समञ्जस दर्शनः उदास्ते इति ह वाव न विदामः। अथ अतः तत्र उसमें भवान आप किम क्या देवदत्तवत् अपने कर्म फल से अधीन सामान्य पुरुष की भांति यह इस भौतिक जगत में गुण विसर्ग पतितः भौतिक प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर भौतिक शरीर में गिरकर पारतंत्रेण काल स्थान कर्म तथा प्रकृति के आश्रित होने से स्वकृत अपने से किया गया कुशल शुभ अकुशलम अशुभ फलम कर्म फल उपाददाति स्वीकार करते हैं आहोस्वित अथवा आत्मा राम पूर्णतया आत्मतुष्ट उपसमशील आत्मसंयमी समंजस दर्शन पूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों से विहीन न होकर उदास्ते साक्षी रूप में उदासीन रहता है इति इस प्रकार ह वाव निश्चय ही न विदाम हम समझ नहीं पाते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद यही हमारी जिज्ञासाएं हैं। सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जो आत्मनिर्भर समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्तियों से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। तात्पर्य भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का विनाश करने, परम सत्य के लिए ये दोनों कार्य एक से हैं। जब वे असुरों को दंड देने के लिए आते हैं तो वे उन पर अनुग्रह करते हैं, और इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं तो उन पर भी अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार वे बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं। जब बद्ध जीव अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है, और जब वह दूसरे को कष्ट देता है तो उसका कार्य अपवित्र होता है। किंतु ईश्वर न तो पवित्र हैं और न अपवित्र, वे सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वे दंडनीय तथा रक्षणीय दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। वे अपाप विद्धम हैं, वे कभी भी पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक बैरी अभक्तों का वध किया, किंतु उन सबों को सारूप्य प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने पूर्व दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं है वह कहता है कि भगवान उस पर अकृपालु हैं, कि दूसरों पर कृपालु हैं। वास्तव में भगवान ने भगवद गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, मैं सबके लिए समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न मित्र। किंतु साथ ही वे यह भी कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है और पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग देवताओं की स्तुति सुन रहे हैं, देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान महान है, उनकी स्तुति करना जीवों के लिए स्वाभाविक है। आप कथा अंश से परिचित हैं, इंद्र अपने गुरु का अपमान किए, भारी कठिनाई का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा जी के सलाह से वे विश्व रूप जी को अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार किए और कठिनाई से दूर हो गए। विश्व रूप जी बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे, अपने इंद्रियों पर पूर्ण उनका नियंत्रण था। देवताओं को वे एक कवच प्रदान किए जो नारायण स्वरूप है, और उस कवच को धारण करके देवता लोग युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विश्व रूप जी के एक कमजोरी थी। कमजोरी इस अर्थ में कि उनको असुरों के प्रति भी स्नेह था, क्योंकि मातृ स्नेह बसानुगा, उनके माँ असुर कुल से आई थी और उसके स्नेह से वे असुरों के प्रति भी स्नेह युक्त थे, और देवताओं को आहुति देते थे प्रत्यक्ष रूप से मंत्र बोल करके, लेकिन परोक्ष रूप से दैत्यों को भी आहुति देते थे। उनके इस व्यवहार को देख करके इंद्र बहुत भयभीत हो गए। भीत भयभीत इस अर्थ में हो गए, उनको स्मरण आने लगा, अरे ये दैत्य हम लोगों की इतनी पिटाही कर देते हैं और कदाचित अब ये इनको यज्ञ भाग दे रहे हैं, इनकी शक्ति और बढ़ जाएगी तो बहुत पिटाई करेंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। और भीत वे भयभीत थे, लेकिन अब धर्म अधर्म पर बहुत विचार नहीं किए, भय के मारे तरसा अच्छिनत विश्वरूप जी के गर्दन को ही काट दिए, थोड़ा भी ध्यान नहीं दे। ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि भाई एक शर्त है, एक कंडीशन है कि यदि उनके कर्म को तुम लोग सहन करोगे तो तुमको संकट से निकाल देंगे, तुम्हारी रक्षा कर देंगे। ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में कहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी के बात पर भी उनका ध्यान नहीं गया और विश्वरूप का वध कर दिया। जो उनको संकट से दूर किए थे, स्वर्ग दिलाए थे, उन्हीं का वे वध कर दिए। ये तो अपने लोभ बस वध कर दिए या भय बस वध कर दिए, लेकिन त्वष्टा के पिताजी बहुत दुखी, नहीं विश्वरूप के पिता त्वष्टा बहुत दुखी हुए। माता पिता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, कोई लड़का बदमाश भी है उसके प्रति भी स्नेह होता है, और विश्वरूप तो अतिशय तेजस्वी व्यक्ति थे और ऐसे पुत्र का वध कर दिए इंद्र, तो स्वाभाविक ही इंद्र के प्रति बहुत आक्रोश हुआ त्वष्टा के हृदय में। ब्राह्मण है, यज्ञ करने लगे, लेकिन यज्ञ इस संकल्प से कर रहे थे कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यज्ञ कर रहे थे कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन मंत्र में व्यभिचार हो गया और इंद्र का वध करने वाला पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन अब मंत्र बोला जा रहा था, जैसा मंत्र था उसके अनुरूप एक व्यक्ति उस यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो गया। आप लोग पीछे इस बात को सुन चुके होंगे कि मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि रह गई, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उनका आशय था कि इंद्र का शत्रु, इंद्र का हत्या करने वाला, इंद्र का वध करने वाला जन्म ले, उसके वृद्धि हो। लेकिन मंत्र उदात अवदात के भेद से थोड़ा दूसरा अर्थ दे दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, बोलने में थोड़ी त्रुटि हो गई, तो उसका आशय निकला इंद्र शत्रु विवर्धस्व। हे इंद्र, इंद्र जिसका शत्रु है, जिसका वध करने वाला है, वह बढ़े। और एक व्यक्ति का जन्म हुआ, वो देखने में बहुत भयंकर था, उनका शरीर वैसे दिख रहा था काला जैसे सखुआ का वृक्ष जला हुआ दिखता है। आप लोगों को अनुभव है नहीं है हम नहीं जानते हैं, जंगल में बड़े बड़े सखुआ के वृक्ष होते हैं, आग लगती है तो उस पर भी असर आता है, लेकिन सखुआ का हीर सार भाग इतना दृढ़ है कि उसमें आग का प्रवेश नहीं हो पाता, वृक्ष का ऊपर का हिस्सा जलता है, बाकी वैसे खड़ा रहता है, लेकिन देखने में वो काला लगता है, जलने से वो बहुत काला दिखता है। वैसे ही वह व्यक्ति दिख रहा था और उसके दांत बहुत विकराल थे और बाल तांबे के तार के समान लाल लाल दिख रहे थे, खड़े खड़े थे। और उसको देखते ही भय उत्पन्न हो रहा था और ईसु मात्रम दिने दिने। उसकी विशेषता थी कि रोज उसमें वृद्धि हो रही थी, ईसु मात्रम बाण के बराबर। कुछ लोग का मानना है कि एक दिन में एक बाण के तरह बराबर वो बढ़ रहा था, कुछ लोग मानते ईसु मात्रम, जैसे बाण तेजी से जाता है वैसे भी बढ़ रहा था। बहुत विशाल उसका शरीर था पहले से ही और अब धीरे धीरे यह तेजी से बढ़ रहा था, तो इसको देख करके देवता लोग बहुत भयभीत हो गए, ये तो हमारा शत्रु है, वो बढ़ रहा है तो हम पर आघात करेगा, हमारा नाश कर सकता है। तो भय के मारे अब होश आवास खो गए और एक साथ सारे देवता अपने सारे हथियार को वृत्रासुर पर चला दिए। इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि ब्रह्मांड ही घेर लिए, पृथ्वी को घेर लिए, इसलिए उनका नाम वृत हो गया। स्वभाव उनका असुर का था इसलिए उनको वृत्रासुर कहते। और देवता लोग उनसे भयभीत होकर के डर के मारे एक साथ अपने सारे हथियारों को चला दिए कि अभी इसका वध कर दिया जाए। लेकिन वृत्रासुर सारे देवताओं के सारे हथियार को मुख में निगल गए, देवताओं के पास एक भी हथियार नहीं बचा। वो देवता बहुत भयभीत हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं की यही विशेषता है कि उनके जीवन में गलती होती है लेकिन भगवान के आश्रय का त्याग नहीं करते। संकट अनुभव करके भगवान की स्तुति करने लगे, वायम वो स्तुति कर रहे हैं कि पंच महाभूत से लोकों का निर्माण हुआ है और इसके इस लोकों के जो भी लोकपाल हैं तो वे सब काल से भयभीत हैं और काल जिस व्यक्ति से भयभीत है तो उसी से हमारी रक्षा हो सकती है। वायम वराग्नप क्षितयस्त्र लोका ब्रह्मादयो ये वयमित द्विजंत हराम जस्मय बलिमंत कोसौ विभेद जस्मा अरण ततून। देवता लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मादयो जो बड़े बड़े लोकपाल हैं, या वयम देवता लोग कह रहे हैं कि प्राचीन काल के में जिनका जन्म हुआ है, जो सबके उत्स हैं, सबके पितामह हैं, वे या वयम अर्वाचीन हम लोग हैं, वो सब लोग भय अनुभव करते हैं। किससे भय अनुभव करते हैं? अंतक, अंतक से, काल से। ब्रह्मा जी खुद अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि यद्यपि हमको बहुत बड़ा पद मिला है, सर्वलोक नमस्कृत, सब लोग इसका सम्मान करते हैं, द्विपरार्ध धिष्णम, और इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी काल पर से बचने के लिए हम तो भगवान का आश्रय लेते। काल से कोई परे नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल से भय है और देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी भयभीत है। तो हम लोग तो भय के मारे जस्मयी बलिम हराम, हम लोग काल को भेंट अर्पित करते हैं। भेंट अर्पित करने का आशय यह है कि काल के अनुरूप हम लोग अपना अपना कार्य करते हैं, हम काल से भयभीत हैं। लेकिन विभेद जस्मा, यह काल भी जिससे भयभीत है तो उसी से अब हमारी रक्षा हो सकती है, वही रक्षा कर सकते हैं। सब लोग काल से भयभीत हैं और काल वैसे व्यक्तियों का पीछा कर रहा है जैसे कोई सर्प पीछा करता है। माँ देवकी अपने विषम स्थिति को व्यक्त कर रही है, अपने दुर्भाग्य को व्यक्त कर रही है, तो कह रही है कि मर्त्य मृत्यु व्याल भीत पलायन शर्मा लोका निर्भयम नाध्य गच्छत। इस संसार की स्थिति है कि मर्त्य व्याल भीत पलायन, ये जो काल है सांप के समान है, कोई सर्प है और खास करके उस पर कोई आघात कर देता है तो पीछा करता है, पीछा छोड़ता नहीं है, बहुत भयावह स्थिति होती है। और देवकी जी कह रही है कि स्थिति यह है कि सारे संसार के लोग काल से भयभीत हो करके आश्रय का अन्वेषण कर रहे हैं, तीनों लोक में भाग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई आश्रय उनको नहीं मिला। यदृच्छया संजोग से जिसकी शरण ले लेते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं, तो रस्मात अपायती, मृत्यु रस्मात अपायती, अब स्थिति बदल जाती है। जब ही भगवान के शरणागति स्वीकार करते हैं तो अब काल दूर भागने लगता है, पीछा नहीं करता है। और वही व्यक्ति हमारे गर्भ में आया, उस व्यक्ति को मैं गर्भ में धारण किए और फिर भी मैं भय अनुभव कर रही हूं, ये तो हमारा भाग्य ही खराब है। और जो हो, देवता लोग कह रहे हैं कि सब लोग जिससे भयभीत है वह काल भी आपसे भय खाता है, तो आपसे ही हमारी रक्षा हो सकती। वे कई एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पहले कई एक लोग संकट में पड़े हैं लेकिन आप रक्षा किए हैं। वे श्राद्ध देव का प्रियव्रत ने क्या नाम है हम लोगों के मन आए वैवस्वत मन, पहले कौन द्रविड़ेश्वर द्रविड़ राजा थे, सत्यव्रत, वे सत्यव्रत महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि जब प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ तो सब लोग भयभीत थे। भगवान उनको पहले बतला करके गए थे कि सब चीज डूब जाएगा, लेकिन तुम भय मत करना, हम वहां उपस्थित होंगे, एक नौका रहेगी, तुम नौका को हमारे सिंह में बांध देना। भगवान उपदेश दिए थे लेकिन फिर भी जब प्रलय उपस्थित हुआ और प्रलय के झकोरे में नाव डगमग करने लगे तो सत्यव्रत महाराज भयभीत हो गए और ऋषि लोग उनको उपदेश दिए, राजन ध्यायस्य केशव, केशव का ध्यान कीजिए। और ध्यान करने से उनको शांति मिली। और देवता लोग कह रहे हैं कि जैसे सत्यव्रत महाराज भयभीत थे उस प्रलय में, आप उनकी रक्षा किए, तो वैसे ही हम हमारी रक्षा भी करेंगे। दूसरा उदाहरण ब्रह्मा जी का दे रहे हैं कि उस समय भी सब जगह जल था और ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चल रहा था और वे भी भय अनुभव कर रहे थे, लगभग कमल लाल से गिर चुके थे, क्योंकि इतनी तेज हवा बह रही थी जो अपने को संभाल नहीं सके, वे गिरने गिरने जैसे थे। लेकिन आप उनको रक्षा प्रदान किए, उनके भय को दूर किए। तो वैसे ही हम लोग बहुत भारी संकट में, बहुत भारी भय अनुभव कर रहे हैं, तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कई एक श्लोकों में वे स्तुति किए और स्तुति का प्रभाव हुआ कि भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। अब तो भगवान सामने प्रकट हुए तो उनको देख करके बहुत आनंद अनुभव किए, वे लोग दंडवत प्रणाम किए और फिर भगवान की स्तुति करने लगे। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, नमस्ते यज्ञ वीर जाय वैसे उतते नम, वे कह रहे हैं कि यज्ञ का फल देने वाले आप हैं। कभी कभी व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा होती है कि अरे कर्म का फल मिलता है, कर्म फल देने वाला, लेकिन वास्तव में कर्म का फल जरूर मिलता है लेकिन कर्म फल अपना नहीं देता है। हम कर्म करने से फल प्राप्त कर लेंगे यह जरूरी नहीं है, ये तो भगवान फल प्रदान करते हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग में आए हैं लेकिन आपके कृपा से, नमस्ते यज्ञ वीर जाय, यज्ञ के शक्ति तो आप हैं, आप यज्ञ का फल देने वाले, आप स्वर्ग प्रदान करते हैं और वैसे उतते नम, केवल स्वर्ग प्रदान नहीं करते काल रूप से स्वर्ग छीन भी लेते हैं। नमस्ते यस्त चक्राय, और जो असुर हैं हमारे विरोधी हैं तो उनको चक्र चला करके शांत करते हैं। नमः सुपुरहूतये, आपके बहुत बहुत नाम हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि सब कुछ आप प्रदान करने वाले, तो श्लोक में भगवान की स्तुति प्रारंभ किए और सुपुरहूतये यानी कि आपके अनेक नाम है, तो श्लोक से पद से स्तुति कर रहे थे, लेकिन अब उनके हृदय में इतनी लालसा थी भगवान के गुणगान करने की कि ये ऐसा अनुभव करने लगे कि पद्य तो छोटा पड़ रहा है, क्योंकि पद्य में कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि जितना शब्द डाल चाहे उतना डाल देंगे, वे अलग अलग उसका छंद है तो उसके अनुरूप शब्दों को डालना होता है। जैसे अनुष्टुप छंद है तो एक पद में आठ ही अक्षर डाल सकते हैं, तो देवता लोग भगवान की स्तुति करना चाहते थे, उनके रूप को देख करके उनके महिमा के स्फूर्णा से उनको इतना आनंद हो रहा था कि उनको लग रहा था कि पद का अवलंबन करके भगवान के गुणों को हम लोग नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए वे अब पद को छोड़ करके गद्य में स्तुति करने लगे। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि मिताक्षराणी पद्यानी न मियंते हरे गुणा, अब जहां नाप तौल करके शब्दों का प्रयोग करना है तो उससे क्या भगवान के गुणगान होगा। इति पद्य रतुष्यंत सद्यो गद्य न तुष्टवु, तो पद्य से असंतुष्ट हो गए कि इसमें तो बहुत गणित लगाना है, तो पद्य को छोड़ करके अब गद्य में स्तुति प्रारंभ किए और बहुत बहुत नाम बोल करके उनको संबोधित करके और उनको नमस्कार करने लगे। लेकिन उसमें एक बात वे कह रहे हैं कि दुर्वबोध इव तवायम बिहार जोग, वो भगवान से कह रहे हैं कि आपके लीला को हम लोग नहीं समझ सकते। भगवान के दो प्रकार की लीला है, कुछ प्रकृति के गुणों से युक्त है, सृष्टि इत्यादि भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा करते हैं, लेकिन भगवान के कुछ लीला है अपने धाम में कि वहां प्रकृति के गुणों का कोई जगह नहीं है, और जबकि उसको सुपीरियर माना गया है। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि आप लोग स्तुति कर रहे हैं तो जो प्रकृति के गुण से संबंधित उन्हीं बातों को आप कह रहे हैं, वो भगवान के अपना दिव्य लीला है उनके धाम में और उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो ज्यादा महान है तो उस पर उल्लेख करना चाहिए। तो देवता लोग अपनी मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग भगवान के अतरंगा लीला को समझ ही नहीं सकते, अरे हम लोग ये जो सृष्टि की लीला है इसी को नहीं समझ पाते हैं। वे कह रहे हैं कि यद अफरण अफरीर इदम अनवेक्षितम इदम अनवेक्षित अस्मत समवाय, अरे कि सृष्टि पर विचार करे तो भगवान का कोई आश्रय नहीं है अशरीर, वे किसी भौतिक रूप में आबद्ध नहीं है, किसी भौतिक रूप का आश्रय नहीं लिए हैं और विविध प्रकार के रूप की रचना कर देते हैं और किसी की सहायता नहीं लेते हैं। जीव और भगवान में अंतर है, जीव कोई भी क्रिया करता है तो देवताओं का सहयोग जरूरी है, सारे इंद्रियों पर देवताओं का निवास है और सच्चाई है कि वही कार्य का संपादन करते हैं। इन देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपके स्वरूप को नहीं समझ पाते क्योंकि आपका किसी का आश्रय नहीं है, आपका शरीर नहीं है और आप विभिन्न प्रकार की रचना कर देते हैं और अकेले, किसी के सहयोग की भी जरूरत नहीं है और केवल रचना ही नहीं करते हैं, पालन करते हैं और इसका नाश भी कर देते हैं। और कह रहे हैं कि केवल इतना ही नहीं है, हम लोगों को और भी कई एक संशय आ जाता है मन में, हम आपकी स्थिति को नहीं समझ पाते। उल्लेख कर रहे हैं कि कभी कभी आप ऐसी लीला करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप साधारण मनुष्य के समान अपने कर्म फल को भोग रहे हैं कि आप इससे ऊपर हैं, उदासीन हैं, इसको हम लोग समझ नहीं पाते। अब देवता लोग समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, अब इस विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर उनके उक्ति से है कि वैसे लोगों पर आक्षेप कर रहे हैं जो लोग भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भगवान के व्यवहार को देख करके वे मानते हैं कि ना वो भगवान नहीं हो सकता, वो साधारण मनुष्य हो सकता है। कभी कभी लोग अंतर करने लगते हैं, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया है, वो वैसे लोग भी भगवान के व्यवहार में संदिग्ध हो जाते हैं। ऐसे लोग बोल देते हैं कि ना, जो गोपियों का वस्त्र चुरा सकता है वो गीता का वक्ता नहीं हो सकता, एक व्यक्ति वो नहीं है। इधर गीता का उपदेश करने वाला व्यक्ति और गोपियों का वस्त्र चुरा सेम व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे उनके धारणा। तो कम से कम देवताओं का वैसे लोगों पर आक्षेप जरूर है कि भगवान को नहीं समझ सकते। तो कह रहे हैं कि अततत्र भवान किम देवदत्त वत इह गुण विसर्ग पतितः पारतंत्रेण स्वकृत कुशला कुशलम फलम उपाददाति। नहीं समझ में आता है कि आप इस संसार में एक साधारण मनुष्य के रूप में अपने कर्म फल का भोग कर रहे, सुख दुख को भोग रहे हैं, या आप एकदम आत्माराम हैं, उपशमशील हैं, आपको विषय से कोई मतलब नहीं, अपने में संतुष्ट हैं और आपका ज्ञान बिल्कुल अक्षुण है, ये समझ में नहीं आ पाता है। भगवान का ऐसा ऐसा व्यवहार है कि उससे व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है कि जीव है, जीव जैसा कर्म के अधीन है कि ऊपर है, कुछ वे समझ नहीं पाते। या भगवान का दो स्वरूप है, जैसे वे शरीर में पड़े हैं गुण विसर्ग पतित, ये गुणों की रचना शरीर है, इसी के अंदर परमात्मा भी है, तो वे तो सुख दुख से एकदम प्रभावित नहीं होते, इसको समझने में तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन वही भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो बात समझ में नहीं आती है कि भगवान है कि साधारण मनुष्य है, और बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं क्योंकि भगवान का ऐसा व्यवहार है। आप देख सकते हैं जब यह सूचना मिली कि पांडव लोग जल गए, कुंती के साथ पांडव लोग जल गए, अब घटना को बतलाने का तो समय नहीं है, लेकिन वो जले थे वो भिलनी के पुत्र, लेकिन सब जगह सूचना तो यही फैली कि कुंती सहित पांडव जल गए। वो भगवान को सब पता था, लेकिन जैसे लोक में अब कोई घटना हो गई तो उसके यहाँ लोग सहानुभूति के लिए जाते हैं, तो कृष्ण बलराम दोनों वहां गए और हस्तिनापुर के जैसे लोग दुखी थे, रो रहे थे, वैसे कृष्ण बलराम भी रोने लगे, क्योंकि अब उनका ऐसा व्यवहार है कि समझ में नहीं आती है कि साधारण मनुष्य हैं, भगवान हैं, और बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान शिव वो अतिशय महान व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी अपनी पत्नी भी भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाए, उसके मन में संशय हो गया। लंबी कथा है, एक बार भगवान राम की कथा सुन करके शिव जी वापस आ रहे थे, अगस्त ऋषि से कथा सुने और कथा में निमग्न थे, और उनको पता था कि अब यह टाइम आ गया है त्रेता युग, और इस समय भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनके मन में बहुत लालसा थी कि भगवान के उस रूप का दर्शन हो जाता, वे लालसा से आ रहे थे। और भगवान तो केवल लालसा ही देखते हैं, शिव जी के हृदय में लालसा थी तो अपने रूप को प्रकट कर दिए। संयोग से शिव जी उसी वन से गुजर रहे थे, दंडक वन से, और वहां भगवान उस समय सीता जी के विरह में रो रहे थे, सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दुई भाई, राम लक्ष्मण एकदम विकल हो रहे थे, रो रहे थे और सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखता के। अरे सीता जी से तो कृष्ण राम का कभी संयोग होता है न वियोग होता है, वे तो नित्य साथ रहती हैं, लेकिन उस स्थिति में भी वो प्रकट देखा गया, देखा प्रकट विरह दुखता के, लेकिन भगवान राम के प्रकट दुख देखा गया, वे रो रहे थे, क्रोध में थे, क्या क्या बोल रहे थे। अब शिव जी इसी रूप को देखे और शिव जी को तो बहुत प्रसन्नता हुई, भगवान के लीला को देख करके प्रसन्न हुए, लेकिन देख रहे थे कि उचित समय नहीं है वहां जाने का। शिव जी भगवान के लीला के रहस्य को समझते हैं कि भगवान तो मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं, अब हम जाकर के दंडवत मारेंगे तो कई एक लोग संशय में पड़ जाएंगे कि मनुष्य है कि नहीं, भगवान है, तो सोचे कि भगवान के लीला में बाधा नहीं डालना चाहिए। लेकिन दूर से जय सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किए और जय सच्चिदानंद कह करके थोड़ा बगल से निकल गए। अब इस घटना को देख करके वो सती जी के मन में बहुत भारी संशय हो गया। सती सुदशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषी। शिव जी की स्थिति थी कि भगवान के छवि को देख करके, रूप को देख करके इतना आनंदित थे कि उनको बहुत दिन तक पुलक होता रहता था, रोमांचित हो जाते थे उस रूप को देख करके। अब शिव जी की स्थिति को देख करके सती और अधिक संशय में पड़ गई और वो कई एक विकल्प करने लगी कि अरे आश्चर्य की बात है कि सारे लोग हमारे पति को नमस्कार करते हैं और यह व्यक्ति हमारा पति एक राजपूत को नमस्कार कर रहा है, राजा के लड़का को नमस्कार कर रहा है, क्या वो राजा का लड़का भगवान है? भगवान होता तो विरह में क्यों पड़ता है? अरे वो तो एकदम रो रहा है, वे कैसे भगवान हो सकता है? अच्छा मान लीजिए क्यों भगवान का अवतार हो सकता है? भगवान अवतार लेकर के आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। तो भगवान जब अवतार लिए हैं तो हमारे पति जैसा वे भी सर्वज्ञ हैं। जो भगवान होते तो अज्ञ के भांति, मूर्ख के भांति सीता का खोज क्यों नहीं क्यों करते? अरे उनको तो सब ज्ञान होता है ना। तो हम यह कह रहे हैं कि भगवान के व्यवहार को देख करके बड़े बड़े लोगों के मन में संशय हो जाता है कि आदमी है कि भगवान है। देवता लोग इसी पक्ष को कह रहे हैं कि हम लोग आपकी स्थिति को नहीं समझ पाते कि आप साधारण मनुष्य जैसा अपने कर्म फल का भोग कर रहे हैं कि इससे बिल्कुल उदासीन है, अपने में रमण करने वाले हैं, क्योंकि आपका ज्ञान कभी अक्षुण्ण नहीं होता। और इन सब बातों को बोलते हुए देवता लोग भगवान की स्तुति करते हुए उनको नमस्कार कर रहे हैं। इन बातों में दिखा रहे हैं कि विरोध दिख रहा है, लेकिन आगे वे खुद ही इसका समाधान किए हैं कि अंततः भगवान में कुछ विरोध है नहीं। श्रील प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं कि भगवान की यह स्थिति है कि किसी का वे किसी पर अनुग्रह करें या किसी को दंड दे, उसमें अंतर नहीं रह जाता, वो अनुग्रह के रूप में ही हो जाता है। किसी को अपना दर्शन दें या किसी की हत्या ही कर दें तो दोनों अंततः अनुग्रह ही होता है। तो इन सब बातों को देवता लोग स्पष्ट किए हैं कि देखने में विरोध लगता है लेकिन वास्तव में आप में विरोध नहीं है। भगवान में विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, ये भगवान की महिमा है, ऐश्वर्य है। तो इन सब बातों को हम लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।